डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो बच्चों, डी ब्लॉक का ये नेक्स्ट पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नंबर 2। और लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का जो है डिस्कशन किया था। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक। द रीज़न वी ऑल नो वेरी वेल, पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक आता है, उसके बाद पी ब्लॉक आता है। सो एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो एक्चुअली एंड क्वाइट ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। स्लोली एंड स्लोली एन माइनस वन मीन्स पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप, राइट? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस पार्टली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज एक्चुअली स्मॉल, राइट? 5D की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं दे आर क्वाइट हाई दैन 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज, ऑल थैंक्स टू द ग्रेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड बिकॉज ऑफ इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4F इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जीज को हम इतना इम्पॉर्टेंस क्यों देते हैं। एक्चुअली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन NCERT के अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, निकल 2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अगर इसका डाटा बच्चों देखो ना, निकल की जो सम ऑफ फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज है दैट इज 2.49 × 10⁻³। और प्लैटिनम के लिए सम ऑफ फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज इज 2.66 × 10³। मींस निकल को कम एनर्जी देनी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। सो डेफिनेटली क्वाइट ऑब्वियसली निकल प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हमें देखने को मिलता है कि निकल 4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ क्वाइट लेस फिजिबल देन प्लैटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। द रीज़न उसमें भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो डाटा है वो हेल्प करती है। निकल 4 बनाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी, निकल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, और उसमें कितनी एनर्जी लग रही है दैट इज 11.29 × 10³। प्लैटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1, वी नीड सम ऑफ फर्स्ट 4 एनर्जीज दैट इज 8.36 × 10³। मीन्स जस्ट इट इज एक्चुअली वेरी लेस देन निकल 4, राइट? सो प्लैटिनम 4 इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन निकल 4। सो यही रीजन है कि K2PtCl6 इज नोन टू अस, और अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टेबिलिटी आर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? ये दो फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि आपकी ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी कि नहीं होगी। और जितनी ओवरऑल मीन्स अगर टोटल एंथैल्पी चेंज देखा जाए मेटल से मेटल आयन में शिफ्ट होने में, ट्रांजिट होने में, तो टोटल कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट इज़ योर एटोमाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों एनर्जीज का जोड़ का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही स्टेबल मानी जाएगी। दिस इज द निक पॉइंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम लोग 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली वेरी करती हैं. लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टाइटेनियम, इट इज -1.63, देन वैनेडियम -1.18, क्रोमियम -0.9, मैंगनीज ये बढ़ जाएगी अभी -1.18, आयरन का -0.44 हो जाएगा, कोबाल्ट का फिर कम होगा -0.28, निकल इज -0.25, एंड हियर एक्सेप्शनल बिहेवियर इज शोन बाय कॉपर दैट इज +0.34, एंड जिंक इज अवर एक्सेप्शनली डिफरेंट दैट इज -0.76, दैट इज ऑल थैंक्स टू द कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एस ऑर्बिटल. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ वेरिएशन इतनी क्यों देखने को मिल रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज में. तो बच्चों रीजन वही है कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जीज का वेरिएशन है वो वेरिएशन सीधे सीधे हमें इन्फ्लुएंस करेगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में. लाइक आयोनाइजेशन एनर्जीज वेरी करती हैं एज वे मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, राइट? तो बीच में आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. द रीज़न इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द न्यूक्लियर चार्ज. तो इसका मतलब ये है कि जो रिडक्शन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल्स जो हैं उनकी वैल्यूज भी वेरी करेंगी. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपर. कॉपर का पॉजिटिव 0.34 क्यों होता है? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉपर टू कॉपर 2+, विच इज नॉट गिवन बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कॉपर प्लस आयन जो है अगर उसको हम वाटर में डालें तो दैट इज नॉट स्टेबल. व्हाट इज द रीजन फॉर इट? तो कॉपर प्लस कंपाउंड, कॉपर वन कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको अगर पानी में डालेंगे तो बच्चों उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है. कॉपर एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है और रिडक्शन रिएक्शन भी शो करता है. कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड इन द सेम रिएक्शन क्रिएट और इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 मेक्स. सो बिकॉज कहीं ना कहीं वाटर इज हेल्पिंग प्रोवाइडिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन. At the same time, copper doesn't liberate hydrogen gas because इसका जो reduction potential है वो hydrogen से नीचे है. Hydrogen का हम reference बांध के चलते हैं, zero होता है. मतलब ये कि अगर हम hydrogen electrode के सामने, हमारा जो SHE होता है उसके सामने अगर copper का electrode रखें तो hydrogen infect उसको electron देगा copper को, ना कि copper hydrogen को. इसी की वजह से copper does not liberate hydrogen gas. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल शो करती हैं काफ़ी वेरिएबल होती हैं. +2 से स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम +7 +8 तक हमें देखने को मिलती हैं. उसके पीछे रीजन है कि इनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैन डोनेट दोज इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्डिंग. और the same thing, participation of ns and n-1d orbital electrons in the bonding. और low oxidation state जब मिलती है like +2, उसके पीछे reason ये है कि आपके ns orbital electrons जो हैं वो participate कर रहे हैं. अगर higher oxidation state मिल रही है like +3 +4 +5 +6 +7, means उसमें n-1d orbitals के electrons जो हैं वो participate कर रहे हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय वन इन ट्रांजिशन सीरीज. इफ यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक और या फिर अदर ट्रांजिशन सीरीज में ना, तो आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है वो 1-1-1 का होता है, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिस चेंज वी ऑब्जर्व बाय 2. ओके, और हर ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडल. ओके, एंड देन इट डिक्रीजेस. इन बिगनिंग वी आर गेटिंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट. लाइक इफ वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्टार्टिंग में यू आर गेटिंग लेस वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मिडल में आते आते मैंगनीज +7 तक शो करता है और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जो है वो हमें कम मिलती हैं. द रीज़न इज कि स्टार्टिंग में इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते देने के लिए, है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कम मिलेंगी. लेकिन लास्ट में आते आते होता क्या, पेयरिंग अप हो जाती है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग. एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर 3D+2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमन मिलती हैं, क्योंकि मोस्टली 4s जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2 and +3 जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ऑस्मियम और रुदेनियम जो हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +8 की. निकल और आयरन जो हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. क्यों और किन कंपाउंड्स में वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री निकल कार्बोनाइल में पढ़ चुके हैं NiCO5 एंड FeCO5 में. वैनेडियम फ्लोराइड के साथ अपनी बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +5 की. सो मैंगनीज, ये एनसीईआरटी का बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि मैंगनीज क्यों इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. भैया मैंगनीज में हाफ फिल्ड जो है अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाते हैं और बाकी डी के 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट. अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नॉर्मली देखने को मिलती है कि कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड. क्या रीजन है? एक्चुअली जो कॉपर +2 है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके Cu2I2 बनाता है और साथ में आयोडीन गैस रिलीज करता है. सो ये बच्चों था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट्स की मैंने बातें की हैं. अब मैं यहाँ पर हल्की फुल्की चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. हम लोगों को पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खूब अच्छे से तुम लोग पढ़ के आए हो. तो रीज़न क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं? द रीज़न इज स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड सेकंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अदर लिगेंड्स. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. सो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बनाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं. द रीज़न द डी ऑर्बिटल है ना प्रेजेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट हैव सेम एनर्जी इन देयर कॉम्प्लेक्सेस. सो वेन एवर द लिगेंड अप्रोचेस, जो भी लिगेंट के साथ वो अटैच्ड हैं उनके इन्फ्लुएंस के चक्कर में डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन टू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स EG एंड T2G, right, having slightly different energies. So in the transition element which have partly filled d orbital, transition of electrons can take place from one of the lower d orbital to some higher d orbital within the same subshell. The energy required for this transition falls in the visible region. So when white light falls on these complexes, they absorb a particular color from the radiation for the promotion of electron and the remaining colors are emitted. The color of the complex is due to this emitted radiation. और यही reason है कि cupric salts are bluish green due to absorption of red light and titanium 3+ salts appear purple due to absorption of yellow light. दूसरी तरफ zinc 2+ and titanium 4+ के जो salts होते हैं बच्चों वो white color के होते हैं because they do not absorb any radiation in the visible region. In these compounds, DD transitions are not possible. Why? Because in zinc 2+, all the d orbitals are fully filled, whereas in titanium 4+, all d orbitals are vacant. So, bhaiya, transit karne ke liye koi electron bacha hi nahi, to kahan se transition hogi, kahan se absorption hogi, aur kahan se hume color dekhne ko milega. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बड़े तरीके के मैग्नेटिक जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. द रीजन ट्रांजिशन मेटल्स आई जनरली कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड हेंस देयर कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली पैरामैग्नेटिक. और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन increases with increase in number of unpaired electron. Paramagnetism is expressed in terms of magnetic moment, और magnetic moment का जोरदार formula आप लोगों को पता है, वो है mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. वहाँ पर n क्या है? n is the number of unpaired electron. And bm किस चीज़ के लिए है? Bohr magneton. And unit of Bohr मैग्नेटॉन बीएम की वैल्यू क्या होती है? 9.27 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला. सो इट इज नोटेड दैट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड ऑन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और भैया साथ के साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी है. हम फिजिक्स में पढ़े हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में. ऑल राइट, सो यहाँ पर लाइक अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.75, अगर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2.76, अगर थ्री है तो 3.87, अगर फाइव है तो 5.92, फोर है तो 4.9, राइट. तो इस तरीके से हम बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं. द अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. भैया जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बहुत जोरदार कैटलिस्ट बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमोनिया बना रही हूँ बाय हेवर्स प्रोसेस, वैनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 या फिर प्लेटिनम एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस. फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड फेंटॉन्स रिएजेंट आर यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स. सो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसीज ट्रांजिशन मेटल्स समटाइम्स फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स एंड प्रोवाइड अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. सो कुछ केसेस में ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड अ सूटेबल सर्फेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. द रिएक्टेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट वेयर रिएक्शन अकर्स. सो एड्सॉर्प्शन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द सर्फेस एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी काफ़ी हद तक एटॉमिक साइज़ उनके सेम होते हैं. ये हम एटॉमिक रेडियस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, उनके रीज़न भी पढ़ के आए हैं. लेकिन ये आपको पता है ये जो प्रॉपर्टी है सिमिलर एटॉमिक साइज़ की, वो एलॉय बनाने में बड़ी हेल्प करती है. क्योंकि एलॉयज़ में सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि साइज़ शुड बी सेम, राइट. सो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो म्यूचुअली सब्सटीट्यूट कर देते हैं देयर पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस. और मेनी अलॉयज आर पॉसिबल बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स. लाइक अलॉयज आर फॉर्म्ड रिलेटिवली हार्ड, पोजेस वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड स्टेनलेस स्टील. अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद नॉन ट्रांजिशन मेटल लाइक ब्रास. ब्रास में कौन कौन सी मेटल्स यूज होते हैं? कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कौन से यूज होते हैं? कॉपर एंड टिन. ठीक है, तो जिंक और टिन ये मेटल्स हैं अलॉयज बनाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मींस क्या होते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, दे आर कैपेबल ऑफ एंट्रैपिंग स्मॉलर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया इन द इंटरस्टिशियल साइट इन देयर क्रिस्टल लैटिस. सो दीज ट्रैप्ड एटम गेट बॉन्डेड टू द एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट. सो प्रेजेंस ऑफ दीज एटम रिजल्ट इन द डिक्रीज इन वॉट? मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द मेटल. बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड बिकॉज of the presence of trapped carbon in the interstitial spaces. So generally ये non-stoichiometric होते हैं अपने interstitial compound and typically ना तो ये ionic में category में आएंगे ना ही ये covalent category में. और इनकी main example titanium carbide आ गया, Mn4n आ गया, Fe3h आ गया, right? और इनकी main physical और chemical characteristics में आ जाएगा कि भैया इसके melting point जो होते हैं वो काफ़ी higher होते हैं as compared to pure metals के. किसके? इंटरस्टिशियल कंपाउंड के. ओके, और ये कंपाउंड्स काफ़ी हार्ड होते हैं. इनके जो बोराइड्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एज हार्ड एज डायमंड एंड दे हैव वेरी गुड मेटालिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली मच लेस रिएक्टिव दैन द प्योर मेटल एंड दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डी ब्लॉक एलिमेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू.
the story Miss Mala the Spy. So let's start it. 1, 2, 3, start. Mala, a chirpy girl, isn't happy because her cousin Bella had used bad words to their village. Bella and Harry have come from UK and they are Mala's uncle's kids. They are here to spend their summer vacation. They're bored of the life of the village. Mala is a 10-year-old girl who studies in 5th class. She decides to take her cousins to the fort on the hills to show them how beautiful our village is. So kids pack their backpacks and inform their parents that they are going for a trek. They walked and climbed the hill and reached up to the fort in 2 hours. Bella and Harry were tired. Outside the fort, a man with scary eyes warned them do not to enter in the fort because there are ghosts in the fort. Mala laughed and told him that ghosts do not exist. All the kids entered inside the fort. Bella screamed when she saw a bat hanging on a tree. She asked Mala to go back to her, but Mala didn't listen to her. Bella and moved towards dark tunnel. All of a sudden, a train of monkeys attacked the kids. Bella urged Mala to rush back to home. Mala unwillingly instructed everyone to go back to home. All the kids reached home by evening. They were so tired that they slept without eating dinner. But Mala couldn't sleep. She wanted to go to that mysterious fort. Next day, in the morning, mothers woke up the kids. To their surprise, Mala was not on the bed. Everyone got worried at home. In reality, Mala got a bad fire walk, packed her backpack, and went to the fort again as soon as she entered the fort. She directly entered the dark tunnel. She switched on her torch. She saw a big door at the end of the tunnel. She opened the big door and for her surprise, there was lots of gold, red gems, lots of Indian money. She examined the whole room. She picked up a few gold coins and put them in her bag so that she could tell her parents. She decided to return as she was about to leave. She heard male voices. She quickly hid behind the door. The men opened the door and started laughing loudly. Ha 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 ha. Mala thought to escape from the fort. All of a sudden, the torch in her hand fell on the floor and a bang loud noise. Tung! All the thieves looked back. Mala picked up the torch and started running very fast. The men chased her. Mala fell on the floor. Because her foot stuck in the fence. Men reached near Mala. She didn't panic. She took off out knife from her secret pocket and started screaming loudly. She warned everyone. If they try to harm her, she will kill everyone with the knife. Men started laughing and mocking her. That how could a small girl can kill them? But they didn't know that Mala is a black belt in karate. A man tried to hold her arm. She cut his wrist with knife. He started bleeding. He got scared. Rest of the men started coming towards her. She quickly turned around and injured all the two with knives. All the men were lying on the ground in the pool of blood. Mala swiftly rushed to home. As soon she reached home, she saw everyone was in stress. She told everyone not to panic and told everyone the whole story. She asked everyone to go to the fort. Meanwhile, Mala's father informed the police. All reached the fort and shocked to see that how Mala managed to fight with the dangerous robbers. Police caught all of them. Mala asked the police to follow her to the basement of the fort. As the police reached the basement, they found gold, red gems and money worth of crores of rupees. They praised Mala a lot. Everyone was very happy with Mala's bravery. After a few days, Mala got bravery award from President of India. This is story written by Gorika. Thank you. Hello everybody. Today I am going to tell a story, Miss Mala the Spy. So let's start it. 1, 2, 3 and start. Mala, a chirpy girl, isn't happy because her cousin Bella had used bad words to their village. Bella and Harry have come from UK and they are Mala's uncle's kids. They are here to spend their summer vacation. They are bored of the life of the village. Mala is a 10-year-old girl who studies in 5th class. She decides to take her cousins to the fort on the hills to show them how beautiful our village is. So kids pack their backpacks and inform their parents that they are going for a trek. They walked and climbed the hill and reached up to the fort in 2 hours. Bella and Harry were tired. Outside the fort, a man with scary eyes warned them to not enter in the fort because there are ghosts in the fort. Mala laughed and told him that ghosts do not exist. Ha 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 ha. All the kids entered inside the fort. Bella screamed when she saw a bat, ah, hanging on a tree. She asked Mala to go back to home, but Mala didn't listen to Bella and moved towards the dark tunnel. All of a sudden, a train of monkeys attacked the kids. Bella urged Mala to rush back home to home. Mala unwillingly instructed everyone to go back to home. All the kids reached home by evening. They were so tired that they slept without eating dinner. But Mala couldn't sleep. She wanted to go to that mysterious fort. Next day, in the morning, mothers woke up the kids. To their surprise, Mala was not on the bed. Everyone got worried at home. In reality, Mala got up at 5 o'clock, packed her backpack and went to the fort again. As soon as she entered the fort, she directly entered the dark tunnel. She switched on her torch. She saw a big door at the end of the tunnel. She opened the big door and for her surprise, there was lots of gold, red gems, lots of Indian money. She examined the whole room. She picked a few gold coins and put them in her bag so that she could tell her parents she decided to return. As she was about to leave, she heard male voices. She quickly hid behind the door. The men opened the door and started laughing loudly. Ha 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 ha. Mala thought to escape from the fort. All of a sudden, the torch in her hand fell on the floor and it banged a loud noise. Tung! All the thieves looked back. Mala picked up the torch and started running very fast. The men chased her. Mala fell on the floor because her foot stuck in the fence. Men reached near Mala. She didn't panic. She took out knife from her secret pocket and started screaming loudly. She warned everyone. If they try to harm her, she will kill everyone with the knife. Men started laughing. Ha ha ha, and mocking her that how could a small girl can kill them. But they didn't know that Mala is a black belt in karate. A man tried to hold her arm. She cut his wrist with knife. He started bleeding. He got scared. The rest of the men started coming towards her. She quickly turned around and injured another two with knife. All the men were lying on the ground in the pool of blood. Mala swiftly rushed to home. As soon she reached home, she saw everyone was in stress. She told everyone not to panic and told everyone the whole story. She asked everyone to go to the fort. Meanwhile, Mala's father informed the police. All reached the fort and shocked to see that how Mala managed to fight with dangerous robbers. Police caught all of them. Mala asked the police to follow her to the basement of the fort. As the police reached the basement, they found gold, rare gems and money worth of crores of rupees. They praised Mala a lot. Everyone was very happy with Mala. Bravely, after a few days, Mala got Bravery Award from President of India. This story is written by Gaurika Kalia.